लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अलग तरह से सक्षम लोगों के लिए याचना करते हैं, ताकि उनकी व्यथाओं पर समाज अपना ध्यान केंद्रित करे और समावेशी कार्यक्रमों द्वारा उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंच और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में गुरुवार को शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP28 की शुरुआत, उसमें शिरकत कर रहे प्रतिनिधियों के बीच उस कोष को सक्रिय बनाने पर सहमति हुई है जो जलवायु परिवर्तन द्वारा हो रही हानि और क्षति का सामना कर रहे कमजोर हालात वाले देशों के नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। इस समझौते को इस सम्मेलन के पहले ही दिन एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख सिमोन स्टीएल ने दुबई में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में इस समझौते का ऐलान किया। विशाल एक्सपो सिटी में आयोजित वार्षिक यूएन जलवायु सम्मेलन COP28 30 नवंबर को शुरू हुआ और यह 12 दिसंबर तक चलेगा। यह दुबई के बाहरी इलाके में स्थित है और इस जलवायु मेले में दुनिया भर से आए लगभग 70,000 प्रतिनिधियों, जलवायु वार्ताकारों और अन्य भागीदारों के शिरकत करने की उम्मीद है, जो पृथ्वी के एक बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए होने वाली चर्चाओं के लिए यहां एकत्रित हो रही हैं। COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अल जाबिर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, हम कार्रवाई की तात्कालिकता महसूस करते हैं और जैसा कि आप भी महसूस करते हैं कि दुनिया एक चौराहे पर अटक गई है। विज्ञान ने पुष्टि कर दी है कि ये लम्हा एक नया मार्ग तलाश करने का है जो कि हम सभी के लिए पर्याप्त चौड़ा हो। नया मार्ग वैश्विक आकलन पर निर्णय के साथ प्रारंभ होता है। और मध्य पूर्व में इसराइल फिलिस्तीन संकट पर सुरक्षा परिषद की एक और सघन बैठक बुधवार 29 नवंबर को हुई। सुरक्षा परिषद में मध्य नवंबर में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें हमास से बंधकों की रिहाई और इसराइल से आम लोगों के जीवन की रक्षा की खातिर मानवीय गलियारों का दायरा बढ़ाने का आह्वान किया गया था। उस प्रस्ताव के बाद इस संकट पर सुरक्षा परिषद की ये पहली बैठक है। यूएन प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद में राजदूतों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया गाजा में आम लोगों के कष्टों और पीड़ाओं से आंख फेर नहीं सकती। उन्होंने कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों की मदद से इसराइल और हमास के दरमियान हुए समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र मौजूदा युद्ध विराम से अधिक सकारात्मक संभावनाओं को साकार करने के लिए काम कर रहा है। युद्ध विराम ने हमें पूरे गाजा क्षेत्र में मानवीय सहायता सामग्री की आपूर्ति में सफल होने दिया है, मगर लगभग 20 लाख लोगों के विशाल जरूरतों को देखते हुए सहायता सामग्री की ये आपूर्ति बिल्कुल अपर्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसराइल में हमास में पारस्परिक सहमति के बाद 24 नवंबर को लागू हुए 4 दिवसीय मानवतावादी ठहराव का मोटे तौर पर पालन किया गया, साथ ही इसे 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। इस समझौते के तहत अभी तक हमास ने 85 बंधकों को रिहा किया है और इसराइल ने भी 180 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गाजा में इसराइली हवाई हमलों से 15,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें लगभग 6,000 बच्चे हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने हिंसा के कारण विस्थापित हुई आबादी में बीमारियां फैलने की उच्च जोखिम के बारे में बुधवार को फिर से नई चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने गुरुवार को बताया कि एजेंसी पाकिस्तान से वापस लौटने वाले अफगान परिवारों को सीमा पर आपातकालीन सहायता मुहैया करा रही है। कड़ाके की सर्दी नजदीक होने और खाद्य सहायता अभियान के लिए धन की भारी कमी के कारण इन लोगों को सहायता आपूर्ति अधर में लटकी हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
पाकिस्तान सरकार ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि ऐसे विदेशी लोगों को देश से बाहर निकाला जाएगा जिनके पास ठोस दस्तावेज नहीं थे। यह आदेश 1 नवंबर से लागू हो चुका है। इस आदेश से प्रभावित लोगों में ऐसे लाखों अफगान नागरिक भी हैं जो अनेक वर्षों से पाकिस्तान में रह रहे थे। सीमा पार करने वाले अधिकांश परिवार भूखे, हताश और तत्काल सहायता की आवश्यकता वाले हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने आने वाले सभी परिवारों को भोजन या अन्य बुनियादी जरूरतों को खरीदने के लिए नकदी के साथ साथ पोषण बिस्किट इत्यादि की आपूर्ति जारी रखी है। एजेंसी इस महीने पहले ही लगभग 2.5 लाख लोगों की सहायता कर चुकी है। WFP की अफगानिस्तान देश निदेशक हसियाओ वी ली ने बताया। हसियाओ वी ली कहती हैं, ये परिवार सबसे बुरे समय में अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं जहां उनके पास भोजन का प्रबंध नहीं है, बहुत कम संसाधन है और उनके पास कोई ठिकाना भी नहीं है। कड़ाके की सर्दी बस कुछ ही सप्ताह दूर होने के कारण स्थिति विशेष रूप से गंभीर है और देश अब भी हाल के समय में आए विनाशकारी भूकंपों, क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था और बिगड़ते जलवायु संकट से जूझ रहा है। WFP की अफगानिस्तान देश निदेशक हसियाओ वी ली के शब्द।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को आगाह करते हुए कहा है कि अंटार्कटिका को एक सोता हुआ विशालकाय दानव कहा जा रहा है, मगर अब उसे जलवायु अराजकता ने जगा दिया है। वे गत सप्ताह अंटार्कटिका में थे जहां उन्होंने इस स्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव किया कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से विश्व के ध्रुव दक्षिणी महाद्वीप को प्रभावित कर रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
UN महासचिव ने अपनी अंटार्कटिका यात्रा के दौरान कहा,
What happens in Antarctica does not stay in Antarctica. And what happens thousands of miles away has a direct impact right here in Antarctica.
अंटार्कटिका में जो कुछ होता है वो यहाँ नहीं ठहरता है और हजारों मील दूर जो कुछ होता है उसका भी सीधा असर यहाँ पड़ता है। हम एक आपस में गुथी हुई दुनिया में रहते हैं। जीवाश्म ईंधन हमारे ग्रह को गर्म कर रहा है जिससे अंटार्कटिका में जलवायु अराजकता फैल रही है। UN महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। UN प्रमुख अंतोनियो गुटेरेश ने साथ ही इसी सप्ताह बुधवार को भारत द्वारा आयोजित वर्चुअल G20 सम्मेलन में कहा कि एक ऐसे समय में जब लोग तकलीफें उठा रहे हैं और पृथ्वी ग्रह जल रहा है तो दुनिया के विकसित देश वित्तीय, ढांचागत और जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने बद से बदतर हो रहे जलवायु संकट के कारण गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों के लिए उपजते स्वास्थ्य जोखिमों के मद्देनजर तुरंत ठोस कदम उठाए जाने की पुकार लगाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, UN जनसंख्या कोष और UN बाल कोष ने मंगलवार 21 नवंबर को इस संबंध में अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं अंशु शर्मा।
इस अध्ययन के अनुसार जलवायु संबंधी घटनाओं से मातृत्व और बाल स्वास्थ्य पर होने वाले असर पर जानकारी उपेक्षा की शिकार है और उसे कम करके आंका जाता है। साथ ही मातृत्व और बाल स्वास्थ्य को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया योजनाओं में एकीकृत किए जाने की अहमियत को रेखांकित किया गया है। UN एजेंसियों ने दुबई में आगामी COP28 जलवायु सम्मेलन से ठीक पहले अपनी यह अपील जारी की है जिसमें तत्काल 7 कदम उठाए जाने पर बल दिया गया है। इनमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सतत कटौती, जलवायु वित्त पोषण कार्रवाई और गर्भवती महिलाओं, शिशुओं व बच्चों की आवश्यकताओं को नीतियों में समाहित करना शामिल है। इस वर्ष वनों में आग, बाढ़, ताप लहरें और सूखे समेत विश्व के अनेक हिस्सों में विनाशकारी जलवायु आपदाएं देखी गई हैं जिनका महिलाओं और बच्चों पर गंभीर असर हुआ है।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
तू है दया
अमेरिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वैटिकन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वैटिकन से परम धर्मपीठ का एक शिष्टमंडल संत पापा फ्रांसिस की ओर से दुबई में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए शुक्रवार को वैटिकन प्रेस के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने कहा, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन COP28 के अवसर पर दुबई में पहले से मौजूद परम धर्मपीठ के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता करेंगे, ताकि शनिवार 2 दिसंबर को वे संत पापा फ्रांसिस के योगदान को सम्मेलन के समक्ष पढ़ सकें। इसके अतिरिक्त अगले दिन रविवार 3 दिसंबर को अंतरधार्मिक संवाद संबंधी परम धर्मपीठीय परिषद के अध्यक्ष कार्डिनल आयुसो ग्विक्सो के साथ कार्डिनल पारोलिन फेथ पवेलियन अर्थात आस्था मंडप के निर्धारित उद्घाटन में भी भाग लेंगे। फ्रांस में जारी कैथोलिक गुरुकुल छात्रों के सम्मेलन को प्रेषित संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा है कि यह वास्तव में आशा और आनंद का कारण है कि कई युवा लोग कलीसिया और समाज में व्याप्त इतनी अधिक कठिनाइयों के बावजूद उदारता और साहस के साथ आगे बढ़ते हुए अपने भाइयों और बहनों की सेवा में प्रभु येसु का अनुसरण करने के लिए स्वतः को प्रतिबद्ध करने के लिए तत्पर हैं। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित संत पापा फ्रांसिस का संदेश फ्रांस के गुरुकुल छात्रों को शुक्रवार को प्रेषित किया गया, जिसमें संत पापा ने कैथोलिक गुरुकुल छात्रों को फ्रांस की कलीसिया का आनंद और आशा निरूपित किया है। अपने संदेश में संत पापा ने गुरुकुल छात्रों को स्मरण दिलाया कि वे कलीसिया के भावी पुरोहित हैं, जो प्रभु येसु ख्रीस्त के साथ सहभागिता में संस्कारों को संपादित करने के लिए बुलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पुरोहित मसीह के बलिदान को प्रस्तुत करते हुए ख्रीस्त त्याग अर्पित करता है, जहां वह खुद को ख्रीस्त के साथ संपूर्ण ईश प्रजा और प्रत्येक विश्वासी का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने गुरुकुल छात्रों को आमंत्रित किया कि वे प्रभु येसु ख्रीस्त के सत्य का आलिंगन करें, क्योंकि यही उनके जीवन का आधार और उनकी पहचान है, और प्रभु येसु ख्रीस्त से जुड़ी इस पहचान का केंद्र है ब्रह्मचर्य। संत पापा ने कहा कि पुरोहित अविवाहित हैं, क्योंकि प्रभु येसु स्वयं ऐसे ही थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता मुख्य रूप से ईश शास्त्रीय नहीं है, बल्कि यह रहस्यमय है, क्योंकि कैथोलिक पुरोहित अविवाहित रहने के व्रत के द्वारा स्वतः को दूसरों की सेवा और ईश्वर की अनन्य भक्ति की साधना के लिए अधिक उपयुक्त बना लेते हैं। उक्त संदेश में कहा गया कि फ्रांस में आए सामाजिक विकासों में से एक यह भी है कि संस्था रूप में कलीसिया और इसके पुरोहितों को अब वैसी मान्यता नहीं दी जा रही है जो अतीत में हुआ करती थी। अधिकांश लोगों की दृष्टि में इसने सारी प्रतिष्ठा सारा प्राकृतिक अधिकार खो दिया है। इसीलिए नवीन सुसमाचार प्रचार के साथ आगे बढ़ना एकमात्र संभव तरीका है, ताकि हर किसी का येसु मसीह के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार संभव बन पड़े। फ्रांसिस्कन धर्म समाज की 8वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में संत पापा फ्रांसिस ने धर्म समाज को एक संदेश प्रेषित कर फ्रांसिस्कन मठवासियों और धर्म बहनों को वर्तमान विश्व में अकिंचनता और भ्रातृत्व के सुसमाचार का प्रचार करने तथा अपने मूल करिश्मे को नवीकृत करने हेतु आमंत्रित किया है। सन 1223 ईस्वी में 29 नवम्बर को फ्रांसिस्कन धर्म समाज की स्थापना हुई थी। संत पापा फ्रांसिस ने फ्रांसिस्कन परिवार के सदस्यों से सुसमाचार को साझा करने हेतु दुनिया भर में जाकर अपने संस्थापक के भाईचारे, विनम्रता और अकिंचनता के करिश्माई सत्य की प्रकाशना का आग्रह किया। संत पापा ओनोरियस तृतीय द्वारा असीसी के संत फ्रांसिस धर्म समाज के शासन और नियम की औपचारिक पुष्टि की 8वीं शताब्दी के अवसर पर संबोधित पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने लिखा, फ्रांसिस्कन मठवासियों और धर्म बहनों के लिए दुनिया भर में यात्रा करने का अर्थ है भाईचारे और शांतिपूर्ण जीवन की शैली में यात्रा करना, जो कि सभी ख्रिस्तियों के दूसरों तक पहुंचती कलीसिया बनने के आह्वान के अनुरूप है। रेगुला बुल्लाता अर्थात फ्रांसिस्कन धर्म समाज के नियम को औपचारिक रूप से आज से 800 साल पहले 29 नवंबर 1223 को जारी किए गए आदेश पत्र सोलेरे एनुएरे में मान्यता दी गई थी। संत पापा फ्रांसिस का पत्र रोम में संत जॉन लातरान महागिरजाघर में बुधवार को आयोजित एक पवित्र धर्म विधि के दौरान पढ़ा गया, जिसकी अध्यक्षता रोम धर्म प्रांत के लिए संत पापा फ्रांसिस के प्रतिनिधि कार्डिनल आंजलो दोनातीस ने की। अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि शताब्दी एक शुभ अवसर है, न केवल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को याद करने का, बल्कि सबसे ऊपर उसी भावना को पुनर्जीवित करने का जिसने असीसी के संत फ्रांसिस को प्रेरित किया, जिसके कारण उन्होंने खुद को सब कुछ से अलग कर लिया और सुसमाचार में निहित जीवन के एक अनूठे और आकर्षक रूप को जन्म दिया। वैटिकन में गुरुवार को रात्सिंगर न्यास द्वारा ईश शास्त्री और धर्मतत्व वैज्ञानिक पाब्लो ब्लांको सार्तो और दार्शनिक फ्रांचेस्को तोराल्बा को रात्सिंगर पुरस्कार से नवाजा गया। वैटिकन राज सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलीन ने पुरस्कार प्रदान करते हुए इस अवसर पर सेवानिवृत्त स्वर्गीय संत पापा बेनेडिक्ट 16वें के विचार के महत्व को याद किया, जबकि न्यास के अध्यक्ष फादर फेदेरिको लोम्बार्दी ने कहा कि उन्होंने हमें सत्य की खोज करना सिखाया है। कार्डिनल पारोलीन ने कहा कि एक वर्ष पूर्व इस धरती को छोड़ चले संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने विनम्रता, प्रयास और दृढ़ता के साथ तर्क और विश्वास के दो खुले पंखों के साथ ऊंची उड़ान भरने का दृष्टिकोण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यही कलीसिया के भविष्य के मार्ग में जीवित और उपयोगी बनाई जाने वाली फलदायी विरासत है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि वे एक मेषपाल और आस्था के शिक्षक तथा संवाद का उज्ज्वल और साहसी उदाहरण हैं, जिन्होंने मनुष्य और सृष्टि एवं विश्व की सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक स्थिति के बारे में जागरूकता की शिक्षा दी। और इसी बीच न्यास के अध्यक्ष फादर फेदेरिको लोम्बार्दी ने कहा कि बेनेडिक्ट 16वें ने हमें सत्य की खोज करना सिखाया है। उन्होंने कहा, जोसेफ रात्सिंगर ने कभी भी अपनी खुद की विचार प्रणाली बनाने या अपने खुद की पाठशाला स्थापित करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हमें लोगों के बीच संवाद में तर्कणा को हमेशा खुला रखते हुए, अनुशासन और महान धार्मिक परंपराओं को समेटते हुए तर्कणा की शक्ति और विश्वास की रोशनी में सत्य की तलाश करना सिखाया। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।